उनके बीच में मैं तो आप इतना छोटा सा महसूस कर रहा हूँ आपके को, मगर फिर भी एक साहस किया है कि आपके सामने थोड़ा सा हमारा जो विचार है वो प्रदर्शित कर सके। तो वहां पर कोई हमको बोलता है कि भाई हम तो क्रिश्चियन है और हमारा जो शास्त्र है बाइबल है, मुसलमान बोलेगा कि हमारा कुरान है, हिंदू बोलेगा कि हमारा तो गीता है, तुम्हारा जैन का क्या है? तो जैन का क्या है, जैन का कौन सा शास्त्र है? तो हम बोलते भाई देखो जैन का कोई अकेला कोई शास्त्र नहीं है। आपको शास्त्र की बात करने का है तो 7:15 से 8 तक बैठो तो भी हम आंसर दे सकेंगे हमारा शास्त्र क्या है। तो चलो पहली स्लाइड में नेक्स्ट। तो जैन आगम को तो नेक्स्ट वन, जैन आगम को चार बड़े विभाग में डिवीजन किया गया है कि भाई कर्मानुयोग, नेक्स्ट कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग एंड तो ऐसे चार विभाग तो हमारे शास्त्रों का है और एक एक शास्त्र एक एक अनुयोग की विशेषताएं हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सके कि हमारा बाइबल है या तो कुरान है या तो गीता है, हमारे पास बहुत से स्क्रिप्चर है। कौन सा आपको चाहिए, कौन सी आपकी डेवलपमेंट है, आप बिगिनर है, आप एडवांस लेवल के हैं, तो इस तरह से हम हमारे शास्त्र आपको बता सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जैन शास्त्रों को चार अनुयोग में डिविजन किया गया है। नेक्स्ट, तो प्रथमानुयोग का सब्जेक्ट क्या रहता है? तो 63 सलाखा पुरुष की बात आती है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा 63 सलाखा पुरुष किसको कहते हैं, कौन आई नो आप सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो मुझे शर्म आएंगे क्वेश्चन पूछते भी, मगर फिर भी हिम्मत करता। हाँ बोलो बेटी, हाँ आप बोलो अपने। हाँ पूछा के हाँ 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 तो कल ही हम गजपंथा में गए थे, तो बोला कि सात बलदेव का वहाँ पर मोक्ष हुआ था इस तरह से। अच्छा तो 63 सलाका पुरुष की जो बात आती है, स्टोरी आती है, तो स्टोरी के माध्यम से आज पंडित जी ने, अभय जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई बच्चों को क्या हम शुद्धात्मा की बात करेंगे? नहीं, उसके जो छोटे बच्चों को बोला कि मूल्यह्रास कैसे होता है, तो वो बस चली निकाल दिया। तो बच्चों को किस तरह से शास्त्र की बात समझाना चाहिए, किस तरह से हमारी पहली प्रथम स्टेप से आगे ले जाना है, तो प्रथम अनुयोग में 63 साल का कोर्स की बात है। नेक्स्ट, तो ये सब्जेक्ट है कौन से, किसके लिए है, कि जो बिगिनर है, जो अप्रतिबुद्ध जीव है, जिसको अभी पाप क्रिया में ही मस्त रहता है, शास्त्र क्या है वो सब कुछ मालूम नहीं है, तो उसके लिए ये प्रथमायोग की प्रथम जस्ट उसको ओशन के बीच में आना है, तो जब किनारे पर आके जब पानी में पग रखता है तो हम बोलते हैं तू आजा बेटा, तू आजा, तुझे अच्छा लगेगा, कोई पानी ठंडा नहीं है, बहुत अच्छा टेम्परेचर है, तू आजा, तो धीरे धीरे आएगा, तो उसको हम बताएं। नेक्स्ट, तो इसमें से क्या होता है कि ये जो अप्रतिबुद्ध जीव है, जिसको इसको कुछ मालूम नहीं है, तो वो पाप से करीबन कम पाप करने के लिए निर्धारित होता है, कम पाप करने के लिए तैयार होता है, तो इसके लिए हमने बताया। और नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट वन प्लीज, तो नेक्स्ट में आएगा कि ये जब चार अनुयोग की बात हम करते हैं तो उसमें से क्या मिलेगा, तो इसमें से मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा कई होता है, यानी कि अभी भेद ज्ञान की प्रक्रिया चालू होती है, स्थूल भेद ज्ञान की प्रक्रिया चालू होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अरे ये स्थूल भेद ज्ञान की प्रक्रिया हमको भी करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि पवन जी की सिस्टर है बिनाभर, देहरादून में रहती है, उसने उन्होंने हमको बोला कि पंडित जी, यानी कि पवन जी के फादर पंडित कैलाश जी, तो करीबन रात में 2 बजे उसके दरवाजा खटका रह गए, बिना दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पंडित जी क्या है, आत्मा शरीर से अलग है, ऐसा करके बस अपनी रूम में जाएंगे, उनका कंटिन्यूस वर्तन वो ही रहता था, आत्मा शरीर से अलग है। तो हमारी बाल पोथी में सोनकर बाल पोथी में पहला क्या आता है, कौन सा पहला लेसन क्या आता है, कौन बोलेगा, मैं जीव हूँ, जो पहले दिन गलथुजी में, हिंदी शब्द याद, गलथुजी क्या बोलते हैं भैया, तो पहले दिन जो बताया गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, तो वो ही इतने बड़े पंडित जी वो रात को 2 बजे बोलेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये भेदना मैं कर सकता हूँ, इतना स्थूल भेदना की मैं कर सकता हूँ, इतना मैं करूँगा तो मैं सच्चे रास्ते पर ही हूँ, मेरी गाड़ी आगे बढ़ने वाली ही है, और मैं मेरे गुरु के चरणों में सम्यक दर्शन लेके अर्पण करने वाला हूँ। प्रथमा वो 63 सलाका पुरुष की बात समझते हम शरीर नहीं हूँ, इससे इसका सब भेदना चालू हो गया हमारा। अच्छा हम देखते हैं नेक्स्ट वन, अभी कर्णयोग में क्या आएगा, नेक्स्ट कर्णयोग में लोक अलोक का वर्णन आता है, लोक क्या है, अलोक अलोक आकाश क्या है, बाद में नेक्स्ट नर्क क्या है, स्वर्ग टू स्वर्ग से परिचित, नर्क और स्वर्ग से परिचित होकर पाप से मुक्त होकर धर्म करता है, तो ये अभी थोड़ा सा पाप से विमुख होके पुण्य की अगर शुभ भाव की तरफ आगे बढ़ता है तो आगे ये कर्णानुयोग के माध्यम से आगे बढ़ कि देखो भैया मैं पाप करूंगा तो नरक में जाऊंगा, पुण्य करूंगा स्वर्ग में जाऊंगा। छेदाल में चार गति के दुखों का वर्णन है तो मुझे नरक में नहीं जाना है, चलो मैं स्वर्ग में सुख तो नहीं है मगर नरक जैसा दुख तो नहीं। तो इतना ये अप्रतिबुद्ध जीव इतना समझने से वो अभी पाप से थोड़ा सा भीरू हो जाएगा और शुभ भाव तरफ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, तत्व के अनेक भेद जानकर उसका तत्व ज्ञान अभी निर्मल होता जाएगा। ये कर्म मुझे कैसे लगते हैं, ये ज्ञानावरण कर्म कैसे आए, ये मोहनीय कर्म कैसे आए, तो उसका कारण मैं हूँ, मेरी अपनी परिणति, मेरा विभाव, मैं अपने लिए जवाबदार हूँ। मैं जो कुछ मैं करता हूँ अच्छा या बुरा उसका फल मुझे मिलने वाला है, किसी दूसरे को नहीं मिलने वाला है। मैं किसी को ब्लेम करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे दुख हुआ, आपके वजह से मुझे सुख हुआ, नहीं, मैं सुख दुख मेरे अपने में से मैं करता हूँ। तब वो कर्म वो थर्मामीटर की तरफ बाहर खड़े रहते हैं कि बताते हैं कि भाई तू जितना अंदर तेरा भाव है ऐसा मैं बताता हूँ। कर्म कुछ नहीं करता है, मुझे कर्म कुछ नहीं करता है, कर्म क्या करता है बताता है। आज मैं बाहर जाके खड़ा रहता हूँ, मुझे लगता है कि 18 डिग्री 19 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर होगा और मैंने थर्मोमीटर देखा तो 20 डिग्री टेम्परेचर बताया। तो थर्मोमीटर का जरूरत क्या काम है, जैसी परिस्थिति है ऐसा बतलाना, मेरी आंतरिक परिस्थिति जैसी है ऐसा वो कर्म मुझे बतलाता है। कर्म वो थर्मोमीटर को मैं क्यों ब्लेम करूं, अरे क्यों 19 डिग्री क्यों बताता है, 19 होगा तो नहीं बताएगा, वो अभी 45 नहीं बताएगा। तो इस तरह से हमको कर्मों को ब्लेम करने से हम वापिस आते जाएंगे और मैं अपनी तरफ आगे बढ़ता जाऊंगा। नेक्स्ट, तो अभी क्या हुआ, तो मैं कर्म द्रव्य कर्म से भी रहित हूँ ऐसा मैं तय करता हूँ कि जो मेरा शुभ मैं शुभ भाव करता हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अशुभ भाव करता हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कर्म मुझे कुछ नहीं करते हैं। तो ये कर्णानुयोग से मुझे सीखने का मिला। तो अभी ये दूसरा भेदनाम कौन सा हुआ, द्रव्य कर्म से मेरा वेदना हुआ। अभी वेदना की प्रक्रिया सूक्ष्म होती जा रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी चरण में क्या आता है कि श्रावक धर्म क्या है, मुनि धर्म का क्या वर्णन है, श्रावक का कर्तव्य क्या है, मुनिराज का कर्तव्य क्या है। आज पंडित जी ने बताया था कि भाई मुनिराज जब जो कोई आदमी कोई मरता है तो उसको पानी की जगह वो उनको ज्ञान देंगे कि लास्ट सेकंड पर भी जो वो समझ में आ जाए उसका संवेदन हो जाए तो बहुत बहुत से वो मुक्त हो जाएगा। तो मुनिराज का कर्तव्य वो है, श्रावक का कर्तव्य है तो उसको पानी देना। तो ये सब जो मुनि धर्म श्रावक धर्म का क्या है वो चरणानुयोग के माध्यम से हम सीख सकेंगे। नेक्स्ट, गृहस्थ और मुनि धर्म का विधान सुनकर अपने से होता है ऐसा उत्तम धर्म करता है। अभी उसकी जो धर्म की प्रति रुचि आगे बढ़ती है, डूज एंड डोंट्स का उसके मालूम पड़ता है। देखो कभी कभी हम जहाँ यूएस में जब बच्चे सब बैठते हैं हम बोलते हैं चलो भैया अब क्वेश्चन आंसर का सेशन है, अभी 8 बजे होगा ना हमारा क्वेश्चन, तो हमको मालूम है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। पहला क्वेश्चन आएगा मैं पोटेटो क्यों नहीं खाता हूँ और क्या खा सकता हूँ। तो हमने धर्म को खाने के ऊपर धर्म को बना दिया और डोंट नहीं ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना उसका नाम जो हमने धर्म बना दिया। तो वो बच्चा बोलेगा तो मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए कि जहाँ नेगेटिवली नेगेटिव ही जाता है। हम बस आप जो कुछ मुझे अच्छा लगे आप बोलते हैं वो अच्छा नहीं है, वो धर्म में ना करें। नहीं, हमको धर्म को सच्ची तरह से समझाना पड़ेगा उसको, कि भाई पॉजिटिवली समझाना पड़ेगा कि भाई तू कंदमूल यहाँ पे ये बात मैं क्यों करता हूँ, इसकी यहाँ तो कोई जरूरी नहीं, मगर वहां पर हमारा एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है, कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो उनको पॉजिटिवली कैसे समझाया जाए। उसको पॉजिटिवली समझाया गया तो अभी वो अपने आप से अपनी इच्छा से वो अपने खाने में कंट्रोल करेगा। हमने बताया कि देखो पॉजिटिवली हम देते हैं कि आज देखो ये एग्जांपल भी जो मैं देता हूँ तो ये ऑडियंस के लिए योग्य नहीं है, मगर फिर भी मैं एक साहस करता हूँ कि आज मैं मेरे बगल में मेरा एक जिगरी दोस्त रहता है, अमेरिकन है, और मुझे मालूम है मेरा दोस्त है मगर वो मीट खाता है, और मैं सुपरमार्केट में जाता हूँ उच्च क्वालिटी का मीट सेल पर है, तो मैं मेरे नेबर के लिए तो मीट ले लूं कि ना लूं क्यों? क्योंकि जो मेरे लिए भक्ष्य है वो मेरे मित्र के लिए क्यों लूं, यो मेरे पड़ोसी के लिए क्यों लूं? बराबर, जो मेरे लिए अभक्ष्य है, जो मेरे लिए अभक्ष्य, तो ये पड़ोसी को मैं क्यों दूं? तो जो कंदमूल की बात आती है, तो ये मेरा पड़ोसी है, ये मान करता है, मगर जो मेरे लिए अभक्ष्य है मैं उसके लिए क्यों दूं? इस तरह से जब हम बताते हैं पॉजिटिवली तो उसके माइंड में कीड़ा लगेगा कि हाँ ये बात तो ठीक है, तो वो उसको जब पॉजिटिवली बताया जाएगा तो वो अपने आप से कर सकता है। अब नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने यहां पर लिया कि पॉजिटिव कैसे करें। नेक्स्ट, तो यहां पर कषाय की मंदता होती है और उसके फल सुगति मिलती है। क्यों? चरणाम योग के आचरण की पद्धति। देखो चरणाम योग में अभी शरीर की क्रिया ही होती है, मगर वो शरीर की क्रिया से मैं पाप की क्रिया तो मैंने नहीं किया है। आज मैंने 10 लक्षण पर्व है, मैंने उपवास किया है, मैं घर पर बैठा हूँ, मैंने स्वाध्याय किया है, मैंने मौन रखा है, मैं अपने भाव में रहा हूँ। खाना नहीं खाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे, मगर ये मुझे अच्छा दिन मिला है तो मैं उपवास करूं तो मेरे में शांति रहती है, मेरे में अपनी स्वाध्याय की इंटेंसिटी बढ़ती है, तो इस तरह से उसको उसके फल से उसको सुगति मिलती है। तो अभी क्या बना रहे चरणाम योग, तो क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पर उसको मालूम पड़ता है कि मेरे राग द्वेष मेरे से होते हैं, तो ये राग द्वेष मेरे में से निकलने चाहिए। मेरे में है मगर मेरे नहीं है। अरे ये कैसे होता है? मेरे में होता है मगर मेरा नहीं है। हाँ क्यों? आज मेरे हाथ पर एक फोड़ा हुआ है। किसको हुआ है भैया? मुझे हुआ है, मगर क्या करना चाहिए उसको? उसको रखना चाहिए, उसको पॉप पाउडर लगाना चाहिए, समझाना चाहिए, बराबर। तो क्या करना चाहिए? निकालो, जल्दी से निकालो, जैसे जा। इस तरह से राग द्वेष मेरे में होते हैं मगर मुझे उसको निकालने का है। राग द्वेष मेरे में होते हैं मगर उसको निकालना होता है। तो अभी क्या हुआ? राग द्वेष से भी मेरा भेद ज्ञान चालू हो गया। अभी मेरा भेद ज्ञान सूक्ष्म 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 करके और बढ़ रहा है कि मेरे अंदर मेरी पर्याय में जो राग द्वेष होते हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा मैंने तय कर दिया। तो ये आगे की ओर का भेद ज्ञान हुआ। पहले में शरीर था, दूसरे में द्रव्य कर्म थे, अभी भाव कर्म आ गए, आगे बढ़ते हैं। द्रव्य वेद में क्या आ गया नेक्स्ट? हाँ, तो शुद्ध अशुद्ध आदि छह द्रव्य और नौ तत्वों का वर्णन आता है। छह द्रव्य और नौ तत्व का वर्णन, देखो द्रव्यानुयोग यानी कि हार्ड कोर फिलोसॉफी फॉर द इंग्लिश वर्ड, क्योंकि उसमें कोई एग्जांपल क्या एग्जाम्पल दो, जैसे अनुपम आत्मा किसकी उपमा में दू? कोई मेरा मेरे पास डायमंड होगा तो हाँ ये डायमंड से ये अच्छा है, मगर ये मेरा आत्मा शुद्ध आत्मा मैं किसके साथ, जगत के कौन से पदार्थ है जिसके साथ मैं उपमा करूं? तो शुद्ध मैं शुद्ध अशुद्ध हूँ, मेरे में अशुद्धता मेरे में से है, मेरे में मेरा द्रव्य में क्या होता है, गुण में क्या होता है, पर्याय में क्या होता है, नवतत्व का स्वरूप क्या होता है, ये सब मेरे जानने में जो आता है वो द्रव्य में उनका विषय रहता है। बाद में हेतु दृष्टांत युक्ति नय प्रमाण प्रमाण ये आत्मा, उससे आत्मा का स्वरूप समझ में आता है और उस आत्मा के स्वरूप के प्रति मेरी प्रतीति होती है। ये हेतु दृष्टांत युक्ति नय प्रमाण ये सब प्रमाण ज्ञान का विषय है और हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी हेमचंद जी यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको क्वेश्चन है तो उनको लगाना क्वेश्चन तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अभी 15 मिनट बाकी है, 10 लाख जाने हैं। ओके, तो क्योंकि ही इज एक्सपर्ट, उनकी सुपर सुपर एक्सपर्टी है। जैन जैसे जैसे तत्वात सूत्र आध्यात्म का सूत्र है, इस तरह से जैन न्याय में प्रमाण करना विषय आता है। जो कौन सा शास्त्र है वो परीक्षा मुख, परीक्षा मुख करके जो है तो वो प्रमाण का शास्त्र है। तो इस तरह से हमको ख्याल रखिए, सब तो ख्याल में आ न्याय का ये सब तो को हमको ख्याल में रखने का है। और जब टाइम मिले हेमचंद जी, आई लर्न्ड सो मच थिंग फ्रॉम हिम, ही इज ओशन ऑफ नॉलेज, आई मीन यू नो ही इज सो क्वाइट गाय, वी डोंट नो हाउ मच ही नोज, बट ही नोज सो मेनी थिंग्स। ओके नेक्स्ट वन, तो द्रव्यान्वित के अभ्यास से अनादि का अज्ञान दूर होता, मेरा टाइपो है, अनादि का उसका अभ्यास अज्ञान दूर होता है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान और रह जाए, टाइपो मिस्टेक है मेरा। Sometimes when we transfer to other computer, it just changes the words, you know, here and there. Okay, I'm sorry. Yeah, I want to make sure you guys are awake, and you know that's very good. I'm sorry. Yeah. If I see anybody sleeping, then I'll see sleepy too. So, ये द्रव्यादि के अभ्यास से अनादि का अज्ञान दूर होता है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान क्या होता है मुझे ख्याल में आता है। नेक्स्ट स्लाइड, तो रागादि घटने से अल्प समय में मोक्ष होता है। मेरा रागादि राग तो पर है, मैं स्व हूँ, मेरा स्व द्रव्य त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य 320 गाथा में आगे आएगा, जब गुरुदेव श्री का प्रवचन आगे बढ़ेगा तब आगे बहुत बहुत डिटेल में आएगा। तो वो मेरा रागादि घट, कैसे मेरा रागादि घटेगा? मैंने कुछ नहीं किया है वहां पर, मैंने अपनी ओर दृष्टि किया है, तो अपनी ओर दृष्टि किया है तो राग ऑटोमेटिकली निकल जाता है। जब प्रकाश होता है तो अंधकार को रिमूव करने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रकाश करना है तो अंधकार ऐसे ही निकल जाएगा, ज्ञान प्रकाश किया तो अज्ञान अंधकार ऐसे ही निकल जाएगा। और तो नेक्स्ट, तो यहाँ से क्या हुआ, एक समय की पर्याय से भी मैं अलग हूँ, इस तरह से यहाँ मेरा भेद ज्ञान होता है। तो ये पहले मैंने शरीर से अलग हूँ, वो वेदन हुआ, द्रव्य कर्म से अलग हूँ, भाव कर्म से अलग हूँ, और मैं एक समय की पर्याय से भी अलग हूँ, मैं शुद्ध त्रिकाली आत्म द्रव्य हूँ। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते चारों अनुयोग से मेरे में विकराकता कैसे आती है, ये हमारा ओवरव्यू है। और नेक्स्ट 7 डेज के अंदर हमको यहाँ से इतना एक्सपर्ट बना जाएगा कि हम वो ही बात करते रहेंगे। तो क्विकली नेक्स्ट, तो क्विकली रिविजन करते हैं कि जो जो कुछ हमने सीखा वो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या नेक्स्ट ओ ऊपर हो गया ओके रिविजन प्रथम युग में तिरसठ साल का पुरुष की बात आती है प्रथम अर्थात मिथ्यात्म दृष्टि जो हमने जो बोला लास्ट लास्ट में है मैं शरीर से अलग हूँ वो मेरा भेद ज्ञान तय होता है नेक्स्ट वन हाँ चरण युग में किप गोइंग या जैसा हमने बोला वही आता है ओके तो मैं राग द्वेष से अलग हूँ वो मेरा सेकंड भेद ज्ञान हुआ नेक्स्ट कर्णन युग में मैं द्रव्य कर्म से रही तू ऐसा तय होता है और द्रव्य युग में मैं एक समय की पर्याय से भी अलग हूँ इस तरह से वेद ज्ञान की प्रक्रिया आगे पहले से चालू होती है प्रथमानु युग से तू शरीर से मैं और अपनी एक समय की पर्याय तक आता तो इस तरह से मुझे समझ में आता है कि मेरा ये मेरे चारों चार अनुयोग किस तरह से है अभी किसी को भी आपको समझाना है तो इस तरह से आप समझना पड़ेगा कि बैठ जाते ये सब बाइबल करके हम छूट नहीं जाएंगे तुझे आधा घंटा मुझे देना पड़ेगा अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ओ दिस इज मी आई थिंक नेक्स्ट कंप्यूटर वाला में ओके वाला दिगंबर अनुयोग में व्याख्यान की पद्धति और नेक्स्ट तो ये तो ओवरव्यू है और मोक्षमा प्रकाशक में आठवें अध्याय में ये सब कुछ आने वाला ही है ये जस्ट काइंड ऑफ विज्ञापन बोलते क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट की क्या क्या आने वाला है आपका कल क्या आने वाला है ओके नेक्स्ट तो ओके तो प्रथमानु की क्या सिस्टम है प्रथमानु की सिस्टम अलंकार शास्त्रों अथवा तो काव्य आदि शास्त्रों की मुख्यता से जो आता है वो प्रथमानु की शैली है चरणानु की शैली में आता है नीति शास्त्रों की मुख्यता है आज वो नीति शब्द आया था और आपको क्वेश्चन भी आने वाला है तो ख्याल रखना भैया क्योंकि हमको समझ नहीं पड़ता इसलिए आपको तो मालूम है कर्णन युग में क्या आएगा तो गणित आदि शास्त्रों की मुख्यता से जो बात आती है वो कर्णन युग में आती है द्रव्यान युग में न्याय शास्त्रों की मुख्यता से न्याय यानी कि तर्क से युक्ति से परोक्ष ज्ञान से मुझे आत्मा की पहचान कैसे होती है वो मुझे द्रव्यान युग सिखाएगा नेक्स्ट तो कौन कौन से शास्त्र आते हैं प्रथमानु युग में आदि पुराण इत्यादि जो पुराण की बात आते हैं वो आते हैं चरणानु युग में रसकांत सावक आचार आता है पुरुषार्थ सिद्धि नाम के उपास शास्त्र आते हैं कर्णानु युग में द्रवल आता है षटखंडागम आता है कर्मग्रंथ आता है द्रव्यानु युग में कुनकुन स्वामी के समय सार प्रवचन सार नियम सार इस तरह से शास्त्र आते हैं तो अभी कोई बोलेगा आपका कौन सा शास्त्र तो इतने मेरे शास्त्र है मेरे जेब में ना बराबर नेक्स्ट अभी टाइम कितना टाइम दे दिया ओके ओके नेक्स्ट ऊपर जाइए हाँ अच्छा हाँ तो अभी ये लक्षण क्या है द्रव्यानुप का लक्षण क्या है कर्णानु का लक्षण क्या है चरणानुयोग का लक्षण क्या है वो हम देखेंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के माध्यम से तो इस तरह से थोड़ा सा हमको ख्याल में आएगा कि नेक्स्ट सेवन डेज में मुझे कौन से शास्त्र में क्या कौन से लक्षण पर कॉन्सेंट्रेशन करने का है सब कुछ आगे हाँ ओके तो सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन में द्रव्यानुयोग की बात करते हैं तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति या तो प्रतीति जब मुझे अनुभूति होती है जब मैं अनुभूति एक्सपीरियंसिंग काल में हूँ उसका अनुभूति है जब मैं बाहर आता हूँ तो मुझे मेरी प्रतीति रहती है शुद्ध आत्मा की प्रतीति चालू रहती है तो वो सम्यक दर्शन का द्रव्यानुयोग की दृष्टि से लक्षण हुआ कर्णानुयोग की दृष्टि से लक्षण क्या हुआ तो दर्शन सप्तक का नाश हुआ तब सम्यक दर्शन यानी कि अविरत सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थानक की प्राप्ति हुई चरणामृत में क्या हुआ, तो निशमता, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूर्ता, उपगुणता, स्थितिकरण, वाचलत्व, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग निश्चय और व्यवहार से किस तरह से आते हैं, तो वो उसका जो वर्णन आता है वो सम्यक दर्शन द्रव्य योग प्रणाली चरण योग से किस तरह से आता है वो हमने देखा। बाद में सम्यक ज्ञान में किस तरह से आता है, तो सम्यक ज्ञान में द्रव्य योग में क्या आता है, मेरे आत्मा से जगत के सर्व पदार्थ अलग है ऐसा मेरे में ख्याल आता है। जिस तरह जब मेरी मुझे आत्मा की अनुभूति होती है तब तय हो जाता है कि सर्व पदार्थ, समग्र विश्व के सभी पदार्थ मेरे से अलग है ऐसा मेरे ख्याल में आ जाता है, वो द्रव्यानुयोग की दृष्टि से। और कर्णानुयोग की दृष्टि क्या होता है कि जो मेरा ज्ञान कुमति था और कुश्रुत ज्ञान था वो सुमति और सुश्रुत ज्ञान होगा, और खराब कभी कदापि मेरे में जो कुअवधि ज्ञान था वो भी अभी सुअवधि ज्ञान कहलाएगा। तो ये कर्णानुयोग की पद्धति से। और चरणानुयोग में सम्यक ज्ञान का क्या आएगा, तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग का वर्णन आता है, व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उद्गानाचार, बहुमानाचार, अनिन्वाचार। तो ये सब जो 8 अंग है वो भी हमको जानना पड़ेगा, मुझे लगता है वो कर्णानुयोग में ये सब आएगा, राइट बराबर, हाँ, क्योंकि उसके कर्णानुयोग के 8 लेक्चर हमारे साथ रहेंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल, मगर उसमें तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं, मगर हमको हमारे पंडित जी सब हमको समझाएंगे इस तरह से हमको ख्याल में आएगा। और सम्यक चारित्र में क्या आता है, तो शुद्ध आत्मा में मेरी रमणता, वो द्रव्यानुयोग की दृष्टि से सम्यक चारित्र की बात आई। कर्णानुयोग में क्या है, भूमिका अनुसार मोहनीय कर्मों का नाश, चतुर्थ गुणस्थानक में अनंत अनंतिक कर्मों का नाश हुआ, पंचम गुणस्थानक में अप्रत्याख्यानी वर्ण कर्मों का नाश हुआ, छठे सातवें गुणस्थानक पर प्रत्याख्यानी वर्ण कर्म का नाश हुआ, दसवें गुणस्थानक पर संज्वलन कषाय, इस तरह से जो होता है वो कर्णानुयोग की पद्धति से आया। और बाद में चरणानुयोग में क्या आएगा, पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ति का वर्णन। तो ये लक्षण की अपेक्षा से हमने देखा कि सम्यक चारों 4 अनुयोग में कैसे किस तरह से बात आएगी। नेक्स्ट, तो क्या होता है चारों अनुयोग क्या, नेक्स्ट और नेक्स्ट, चारों अनुयोग का तात्पर्य क्या है, वितरकता है। जब मैं बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ, मेरी परिणति में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिल्ली तोता को खाएगी, बिल्ली तोता को खाएगी, ऐसा तोता को सिखा गया था, वो बोलता ही रहता है, बोलता रहता है, बिल्ली आई पिंजरा खोला और पोपट तोता को खा गई, तब तक तोता ऐसे ही बोलता रहा। तो मैं भी शुद्धात्मा 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 बोलता ही रहूंगा, मगर अनुभूति नहीं करूंगा, वितरकता की ओर आगे नहीं बढ़ूंगा। ये सब मेरा सूक्ष्म ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सूक्ष्म ज्ञान क्या है, किसी को बोलने की पद्धति है वो बोल सकता है। मैं SSC में था, मेरा फ्रेंड था, हमारे साथ में एक लड़का था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं क्या नाम था, मगर उसको हम चूचू बम्बम कह रहे थे। तो चूचू बम्बम को वो एरिथमेटिक का वो टीचर, वो एक ऊपर लिखेगा ना पहला स्टेप, तो वो फ्रागत था बोल देगा, क्योंकि उसको बाय हार्ट कर दिया था, जैसा एग्जाम्पल पहला शब्द आया वो बोल देगा कम्प्लीटली। ऐसा हमको नहीं करने का है, हमको ये सब जान के मेरे में परिणति कैसे हो सकती है, मेरे में कोई वितरकता आई कि नहीं, मेरे में कुछ भिंजास आई कि नहीं, उसका उसको मुझे करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये इतना सुनकर बस मैं तो सो गया। एनी क्वेश्चंस?
नियम सर,
लेकिन बहुत कम मंत्र
है, बाकी द्रव्यानुयोग भी घर से थे उसकी बना।
चलो, आपने मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो आई वाज एबल टू एक्सप्रेस व्हाट वी आर डूइंग देयर। Thank you very much.
वही बैठा ना हाँ चीफ गेस्ट एक माइक इधर आपको भी ना हाँ नवीन भाई को देना हेलो बहुत बढ़िया समाधान सही है
अब इंटरनेट को इतना के लिए व्यवहार करते करते निश्चय नहीं होता लेकिन नहीं लेकिन विकल्प करते करते निर्विक तो हो जाते कृपया स्पष्टीकरण करें
ये किसने बोला विकल्प करते करते निर्विकल्प सोगानी जी के एक जो रेवलेशन रिकॉर्ड है उसमें 144 नंबर का बोल है, मेडिकल ध्यान के पहले घंटों आत्मचिंतन मनन इत्यादि के विकल्प चलते हैं, पर वो भी निर्विकलता का कारण नहीं है।
हाँ जी, हाँ देखते हैं, हाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ से बड़ा गोष्ठी तो हुई है, कर दी। हाँ अभी यहाँ पर स्वतंत्र चल रहा है, कनेक्ट कर दिया। हाँ आप कनेक्ट कर देंगे पत्र का अध्ययन भी बोल था रिप्लाई कर रही है तो यू हैव टू रेड इट ऑल उसमें इंपॉर्टेंट जाएगा एंड देन आई मैंने आई रिसीव की ओके
तो वास्तव में पूर्व पर्याय क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन ये था व्यवहार करते करते निश्चय नहीं होता। व्यवहार करते करते निश्चय नहीं होता लेकिन विकल्प करते करते निर्विकल्प हो जाता है, ये प्रश्न था। तो दोनों बातों को हमें समझना चाहिए। तो मैंने विकल्प वाली बात शुरू की है। देखिए पूर्व भूमिका में विकल्प आते हैं पर विकल्प के कारण वो निर्विकल्प दशा आई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकल्प से निर्विकल्पता हुई ऐसा माने तो आश्रव से संवर हुआ अथवा पूरब पश्चिम की ओर जाते जाते पूरब की ओर चला गया ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प की दशा परतन्मुख है और अनुभूति की दशा स्वतन्मुख है, इसलिए वो उसमें वास्तविक कारण नहीं होती। फिर भी प्रारंभिक दशा में कैसे विकल्प आते हैं उसका ज्ञान कराने के लिए उपचार से उन विकल्पों को पूर्व पर्याय पूर्ण निर्विकल्पता का कारण कहा जाता है। वो उपचार मात्र है, वास्तव में तो प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र अपने सत्कारक से होती है। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कि व्यवहार करते करते निश्चय नहीं होता, ये बात सही है, पर ये किस संदर्भ में कही गई है और इसका क्या मतलब है ये भी हमें समझना चाहिए। वास्तव में निश्चय और व्यवहार के जो प्रयोग हैं वो दो सेक्टर में अप्लाई होते हैं, एक वस्तु स्वरूप के निरूपण में और दूसरे मोक्ष मार्ग के निरूपण में। वस्तु स्वरूप में अपन जैसे कहें कि जीव का वर्णन निश्चय से और व्यवहार से, तो निश्चय से जीव चैतन्य स्वरूप है, व्यवहार से मनुष्य देवनाथ की तरह इत्यादि। तो इसमें कोई व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ तो ये कोई क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता, क्या करना, मनुष्य तो है ही है, वर्तमान पर्याय में मनुष्यता है ही है। ये मोक्ष मार्ग के प्रसंग की बात है। मोक्ष मार्ग में जो सुख भाव ज्ञानियों को आते हैं प्रारंभिक भूमिका में भक्ति दया दान के अथवा पूजा इत्यादि के जो भी है वृद्धशील संयम के, तो जीव ऐसा मानते हैं कि ये करते रहेंगे तो हमको वितरागता की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए कुछ गुरुदेव श्री बहुत
विनोद प्रिय कमेंट्स करते हैं कि लहसुन खाते खाते अमृत की कस्तूरी की कतार नहीं आती। तो स्वभाव होता है, व्यवहार से करना चाहिए, ऐसा उपदेश भी होता है, वो प्रासंगिक बात अलग है। पर हम भेद ज्ञान करेंगे, स्वभाव से भिन्न अपने को जानेंगे, उपयोग स्वसन्मुख होगा तो ही वितरण दशा प्रकट होगी। कितना ही उत्कृष्ट स्वभाव द्रविलिंगी मुनि कर लेता है, ज्ञान नौ पूर्व पढ़ा हुआ और वो महाव्रत आदि का आचरण करता हुआ, यम नियम संयम आपकी हो, तो भी उसको विचारता क्यों नहीं होती, उसको अनुभूति क्यों नहीं होती, स्वभाव में कोई कमी तो है नहीं। तो इस तरह न तो व्यवहार से परमार्थ की प्राप्ति होती है और न विकल्प से निर्विकल्पता होती है। हाँ, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ये चैप्टर अलग है, इसकी चर्चा अपन अपना जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें करेंगे।
एंडन जी, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नानी की एक समय की पर्याय में आश्रव, बंद, संवर और निद्रा चारों तत्व एक साथ है, उसका स्पष्ट ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बहुत चर्चा होती है। जिन समय पर ज्ञानी जी को चारित्र गुण की पर्याय में ये धर्म होता है, मुख्य रूप से समय प्रसंग है, उसे तो समझ धर्म है। यानी चारित्र गुण की पूर्णता होने के लिए चौथे से बारह गुण स्थान तक रहता है, तो उसमें ऐसा होता है कि जितने अंश में कथाएं नष्ट हो गई उतने अंश में समन्वयता चालू रहती है, और जितने अंश में कथाएं विद्यमान है इसलिए चारित्र की पर्याय का नाम मिश्र पर्याय भी कहा। तो मिश्र का अर्थ है कि सरासर नीतरासर दोनों अंश से एक समय पर ही पर्याय में चल रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे समझते हैं ना, किसी ने कहा जाओ मेरे लिए नहाने के लिए गर्म पानी ले जाओ, किसी सर्वेंट को बोला किसके लिए, अब वो अज्ञानी खोलता हुआ पानी ले नहाने के लिए नहीं तो जल जाए, और मूर्ख है तुम कहता ठंडा ला इतना ऐसे, तो जाकर के बिल्कुल ठंडा ले आप गुरु जी, तो कहते ये अच्छा मूर्ख नौकर मिले, आखिर 20 डिग्री का टेम्परेचर का चाहिए ठंड के लिए, तो बताओ वो ठंडा है कि गर्म है। तो ऊपर की दृष्टियों की अपेक्षा वो ठंडा है, नीचे की दृष्टियों की अपेक्षा को उष्ण है, तो ऐसी एक अवस्था उष्ण भी कहो शीतली कहो, तो ऐसी जितनी कथाएं मिली उतने अंत में वो नीतरासता और उसे कवन रचकर चालू रही, और जितने अंत में सरासतम और मिले उतने अंत में उसको आश्रय बंद चले, और पुण्य भाव हो गए पाप भाव हो गए शत्रुता अपनी भूमिका में खासकर गृहस्थ अवस्था और मुनिराज अवस्था में शुभ भाव शुद्ध भाव शुभ भाव शुद्ध भाव अशुभ का अशुभ मैंने मुख्य शुभ अर्थ ध्यान दिखाया इस प्रकार से उसको कह सकते हैं। अशुभ में गुरु का वियोग आदि हो गया तो थोड़ी क्षण के लिए खेद हो बंद करते हैं, तो फिर उनको बिल्कुल
बंद नहीं करेंगे, आपका एको आता है
तो ये हो गया ना, एक समय की पर्याय है, पर्याय से गुण की एक समय में एक ही होती है ना, तो चारित्र गुण की पर्याय उसमें ही एक मित्र भाव बना बनता है, फिर एक सर्वस्वी पर्याय कहते हैं, एक चर्चा चलती है वर्षों से अमृत समय दृष्टि को छाया गुण चार है तो नहीं है, क्योंकि सहिमा संयम और पूर्ण संयम इनको सर्वस्वी भाव में रखा है। लेकिन ये चर्चा का बहुत विषय आगम में भी बहुत आया है कि उसको सर्वघाती प्रकृति अनंतानंदी का क्षय हुआ है, उत्सम हुआ है, शिवसम हुआ है, तो उससे उतरे अंश में पवन निर्णय चालू हुए, तथापि उसको रहते हैं बुद्धिपूर्वक उसकी अभिवृद्धि जीवन शुरू नहीं हुआ है, तो इस प्रकार का उसको भी वहां से चारों तत्व मौजूद दर्शनग्रह में आया कि दूसरी गाथा में कि समय दृष्टि किम का करता है सात तत्वों में, तो लिखा है पवन नजर और मोक्ष का करता है, और ये भी लिखा उसने कि जब वो सुधोपियों में कतले रह पाता तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य का भी करता होता, क्योंकि उसके तो परिणाम होते हैं तो अनंतावश्यक आती है तो उसको उसका भी करता है, और मिथ्या दृष्टि का तो बिल्कुल पाप का लिया है मिथ्या तो अज्ञान संयम का ही करता है। और कदाचित तो भाव खड़े थे मध्यावृत्ति तो पापा में मंदिर को लखन करता हूँ मैंने इस तरह उसके उसके तो पूरे पाप का ही जीवन इस समय वृत्ति पे चल घटती एक समय की पर्यायी सुर भाव की पर्याय उसका समय रहना चाहिए सर्वघाती प्रकृतियों का अनुदय और देश घाती का उदय सब चरुष्मिक भाव बनता है करना मिलती है तो इस प्रकार का है तो उसको जो पांचों में था उसको संयमन जीवन था क्योंकि वहां पर अभी सर्वघाती एक व्यक्ति है प्रत्याख्याना वरण लेकिन वो वस्तुता कहने की सर्वघाती है दम नहीं है तो भी वो सकल वृद्धि नहीं हो पाता इस कारण से उसको उसके अंशों की हिंसा होने पर सर्वघाती करें कुछ क्लियर हुआ हो
भावगन द्रव्यगन भावाश्रम द्रव्याश्रम चारों को किस तरह से डिफाइन करेंगे
बहुत बढ़िया ये ब्रह्म ग्रह संग्रह में जो सब प्रथम प्रकाश कर दिया प्रारंभ सूत्र किया है कि जो जीव के जो परिणाम है जीव के परिणामों के साथ को भाव तत्व लगाना और जो उसके निमित्त से जो कारवाण वर्णा कर्म को प्रणाम किए उनके साथ द्रव्य तत्व लगाना तो जैसे अपन कहते हैं ना तो अनादि में तो कोई प्रमुख जल्दी चला रहा है द्रव कर्म भाव तो जीव के जो परिणाम होते हैं द्वार को प्रणाम दिए भावार्थ और उसी समय जो बंधन हो रहा है उसको भावबंध का या जीव उस परिणाम में रुक रहा है और उसके निमित्त उसी समय समकाल प्रत्यक्ष ऐसा सिस्टम है एक यहाँ चुंबक रखा हो और वहां पर कोई दूसरे आयर फायरिंग वो ला करके रखा गया तीन मिनट नहीं गई तो उसमें योग्यता होने आहार वर्णा ही कर्म तो नहीं पढ़ूंगी कारवाण वर्णा ही कर्म तो पढ़ूंगी और वो भी लंबी व्याख्या है तो इस तरह के द्रव और भाव का भी समझना जो जीव के परिणाम है सुबह सो तो वो कह जाते हैं भावत्व या भावबंध और उसके निमित्त से जो कारवाण वर्णा कर्म रूप बन जाती है बन जाती है प्रकृति प्रदेश रूप स्थिति अनुवाद उनको कहते हैं द्रव आश्रय द्रवबंध
भाव आश्रम और भाव बंध का डिफरेंस क्या है
वो जीव के परिणाम होता है अगर भाव कर्म का हो कर्म का
नहीं नहीं भाव भाव आश्रम भाव बंध दोनों के समय में होता है
एक समय में होता है यद्यपि एक आचार्य का कथन है ग्रह संग्रह ही है कि एक क्षण बाद होता है आना और बंध इसमें दोनों बातें चलती है परमात्मा जो है ना इसमें चर्चा हुई थी जमाने में बहुत पहले कि एक ही समय में होता है तो सामान्य व्याख्या एक ही समय में होता है आप इस हॉल में एंटर हुए तो एंटर हुए तो आना भी हुआ और आपको जो पैर जमा अंदर आए तो वो रुकना भी हुआ तो आना और रुकना एक समय में मुख्य रूप से माना गया है एक साथ ही लेकिन ग्रह में अंदर शब्द है सब उन्होंने क्षमता आना और बनना बहुत व्याख्या मिलती है लेकिन मुख्य रूप से तो समकाल सती है ये भी
टेम्परेरी है ना परमानेंट तो नहीं है ना
वेदना से लेकर सूक्ष्म वेदना तक का स्पष्टीकरण कर
स्थूल भेद विज्ञान से लेकर सूक्ष्म भेद विज्ञान तक का स्पष्टीकरण करें जिसने प्रश्न किया है वो ये तो जानते ही होगा स्थूल भेद ज्ञान किसे कहते हैं सूक्ष्म भेद ज्ञान किसे कहते हैं देखिए हम मन के विकल्पों से जो भी थिंकिंग करते हैं वो सब स्थूल ही होती है चाहे भगवान आत्मा मोक्ष पर्याय से भी भिन्न है एक समय की पर्याय से भी भिन्न है पर्याय जुदी है द्रव्य जुदा है अब इससे बड़ा तो कोई भेद ज्ञान नहीं होता ना इससे ज्यादा शार्प पहना लेकिन हम ये विकल्प कर रहे हैं
तो जब तक ये मन के निमित्त से निकल दशा दशा स्थूल स्थूल है, सूक्ष्मता तो तब होती है जब वो विकल्प का पावर डाउन होने लगता है। आप समझ लीजिए करण लग्नि में जो वेद ज्ञान चलता है वो सूक्ष्म भेद ज्ञान है, विकल्पों की अपेक्षा, और असली पर जब अनुभूति हो जाती है तब परम सूक्ष्म भेद ज्ञान होता है। लेकिन ये सेल्फ प्रोसीजर है, स्वयं की अनुभूति की प्रक्रिया है। प्रश्नकार का आशय प्रतिपादन की अपेक्षा है कि दूसरों को हम बताएं, तो समझ लीजिए पर्याय और भिन्न है ऐसा कहना, अथवा शरीर और आत्मा भिन्न है ऐसा कहना, तो उसमें समझाने में फर्क तो पड़ता ही है। जैसा कि वो बारह भावना में आता है, जहां देह अपनी नहीं तान अपना कोए, घर संपत्ति पर प्रकट हैं परे हैं परिजन जोए। तो वेद ज्ञान में सबसे पहले तो जो नौकर्म है, स्त्री पुत्र धन संपदा इत्यादि, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, यहाँ से चालू करते समझाने के लिए प्रतिपादन की अपेक्षा। क्योंकि ये वैसे भी लोक में भी ये प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देते ही हैं, तो मोह के कारण जीव को अपने भाषित होते, लेकिन इनका वियोग हो जाता है, ये अपने से विरुद्ध प्रणमन भी करते हैं, बेटा हमारा है लेकिन हमारी मानता नहीं, तो कह सकते हैं बंद देखो तुम्हारा होता तो तुम्हारी मानना चाहिए और तुम्हारे साथ सदा काल रहना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। तो इन तर्कों से यानी तर्क से देखा जाए तो लोक कर्म से भेद ज्ञान वो बहुत जल्दी गले उतर जाता है, अगर सामने वाला आग्रह नहीं रखे, जिद नहीं करे, तत्व समझने का जिज्ञासु हो। तो बाह्य पदार्थों से भिन्नता, इसी तरह से देह से भिन्नता कि भाई मैं अनादि अनंत हूँ, देह तो अनादि अनंत नहीं है, और सबसे बड़ी बात देह जड़ है और मैं चेतन हूँ, तो इसमें भी कोई उसकी अपेक्षा भले सूक्ष्म हो लेकिन ये भी एक स्थूलता का ही लेवल है। फिर थोड़ी सूक्ष्मता आती अंदर में रागादि भाव होते। अब देखिए गुरुदेव भेद ज्ञान के लिए नरियल का उदाहरण देते हैं, और वो नरियल में सबसे पहले जो उसके ऊपर जो छिलके होते हैं, जो बाल होते हैं जटा, ऊपर वो भी भिन्न है, फिर बाद में जो काचली होती है जो हार्ट पे, फिर उसका नंबर लगाते नरेटी, और फिर अंदर जो गोला निकलता है जो उसके ऊपर छाल लगी होती है वो भी मिला है। तो गुरुदेव ये क्रम से ही बात करते हैं ना, तो ऐसे नौ कर्म से फिर देह से द्रव्य कर्म से, और वास्तव में द्रव्य कर्म तो अपन आगम से जानते हैं, आगम प्रमाण से ही अपने को द्रव्य कर्म का ज्ञान है, नहीं तो वो इतनी प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, तो आगम से जानते हैं। तो आगम में ये भी कहा है कि वो जल परमाणु है, और फिर राग से, और अंत में क्षणिक पर्याय से भी क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है इसलिए अव्यक्त है। ये अव्यक्त के बोलों में भी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर वाला क्रम लागू किया गया है, तो उसका एक ही देश है, भले वो शुद्ध पर्याय क्यों ना हो, अनुभूति की पर्याय क्यों ना हो, लेकिन वो प्रकट होने वाली चीज है, वो समझ लीजिए सारी शांत है, सारी भाव हो तो सारी अनंत है, और मैं अनादि अनंत हूँ। तो एक चैतन्य ध्रुव तत्व के बाहर जितनी भी चीजें हैं, उनमें भेद कर देते हैं, ये सूक्ष्मता और स्थूलता की बात है। अभी इसके पहले जो बात चल रही थी क्रीट भाई ने उठाई, वो जरा समझने लायक बात है, मैं उस पर दो मिनट बोलना चाहता हूँ। भाव आश्रय और भाव बंध, देखिए पर्याय एक ही है, रागादि भाव, वही पर्याय में ऐसी समझ लीजिए निमित्त होने की सामर्थ्य है कि कर्मों के परमाणु आवे, कितने आएंगे, कौन सी प्रकृति के आएंगे, कितना स्थिति अनुभाव किसमें पड़ेगा, ये सब उस परिणाम के अंदर उसमें ये तत्व बैठा हुए एलिमेंट उसमें मौजूद है। तो क्योंकि कर्म आगमन में निमित्त है, इसलिए वही पर्याय भाव आश्रव है, आत्मन निर्मित है। और जो आया है वो कितनी देर रुकेगा ये अभी उसमें ही है। तो उस एंगल से देखो तो वही पर्याय में भाव बंद तत्व भी उसी पर्याय, तत्व दो है पर्याय एक है। अभी तो तत्व चार की भी बात हुई। मैंने किसी को निमंत्रण दिया तो तैयार हो गया कि हाँ आप बुला रहे तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं एक दिन ही रुकूंगा, सुबह आऊंगा शाम को चला जाऊंगा। मतलब मेरे निमंत्रण में इतनी पावर है कि मैं किसी को बुला तो सकता हूँ, लेकिन आठ दिन नहीं रुक सकता। हमारे कोई बड़े ट्रस्टी हो गए वो बोले नहीं साहब ऐसे कैसे होगा, अभय जी ने कैसे मंजूरी दे दी एक दिन की, आपको तो आठ दिन आना पड़ेगा। तो निमंत्रण तो वो भी दे रहे हैं, लेकिन उनके निमंत्रण में वो आएगा भी और आठ दिन रुकेगा भी। तो ये तो स्थूल उदाहरण है, लेकिन वो एक पर्याय में इतनी ताकत है कि वो कर्मों को बुलाती भी है। तो कौन सा कर्म कितने पावर से कितनी देर रुकेगा ये समझ लो उस परिणाम के अनुभव शक्ति में बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से इस दृष्टि से आप सोचे, बहुत पुराना प्रश्न है ये, बहुत सच्चा है। भाव आश्रम और भाव बंध को कैसे डिफाइन करें, तो तत्व है ना, तत्व का मतलब तो भाव होता है। तो एक पर्याय में दो भाव बैठे हुए, भाव आश्रम का भी भाव बैठा है, भाव बंध का भी भाव बैठा है। ओके,
इसको थोड़ा सा अभिलाष प्रत्येक दृष्टि प्रत्येक पर्याय में जो अभिव्यक्ति होती है तो उसमें जितनी उज्ज्वलता आती है, जितना ज्यादा शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट होता है, और जितना अशुद्धता रहती है तो अभिमान प्रतिच्छेद जो कहे उसकी परिवर्तन आपको होगा ख्याल में। जो व्यक्त पर्याय है उसके अभिभागी अंश शक्ति है, तो जितनी शुद्धता व्यक्त हो गई उससे प्रति समय संबंध जगत चालू है, और उस एक ही पर्याय में जितनी अशुद्धता चल रही उससे आश्रव बंध भी चल रहा है, पुण्यपाप भी चल रहा है। इस तरह से वो आगे आगे बढ़ता है तो वो घटता जाता है, नजर बढ़ती जाती है, आश्रव बंध कम होता है। अपने आप सर्वक्षेत्र का अनुभव चारों की इकाइयों बताएंगे, और आचार्यों ने एक अच्छा उपाय रखा कि कोई पदार्थ का चतुष्टय की बात व्याख्या होनी पदार्थ की संरचना द्रवचेत का अनुभव है, तो द्रव कारिकाओं ने परमाणु और परमाणु इंद्रिय का विषय नहीं होने पर भी वो अपने अनुमान ज्ञान का पक्का विषय बन जाता है, कोई एम्बिग्यूटी कोई डाउट नहीं है। और उसके द्वारा घेरा गया स्थान को प्रदेश एक क्षेत्र की इकाई एक प्रदेश, और वो परमाणु एक प्रदेश उलन करके समय करके प्रदेश पर जाए अथवा एक प्रदेश क्रॉस करके जाए, इसमें भी दोनों व्याख्या मिलती है। ये बताना था श्री भाई कि एक परमाणु जिस प्रदेश पर अवस्थित है उसे समीपवर्ती प्रदेश पर जाए मंद गति से, और अथवा एक प्रदेश को उल्लंघन करके अगले प्रदेश पर जाए, तो व्हाट एवर टाइम इज स्पेंड इन दैट उसमें जो कालक्षेप होता है उसके लिए एक समय, ये टाइम की इकाई बताई। ऐसे अभिवादी प्रतिदिन आखिर वो परमाणु है उसमें तो जगन्न परमाणु कैसे कहना, उत्कृष्ट परमाणु कैसे कहना, ये मेरे ख्याल से नियम सार का था 26वें बात है, कार्य परमाणु कारण परमाणु जगन्न उत्कृष्ट। तो जितने मिनिमम अनुपात प्रतिजी रखते हैं वो जगन्न, और जैसे उसका अंक बढ़ा तो उस हिसाब से उत्कृष्ट। तो ऐसे ये जीव के प्रणाम में भी समझ लेना कितना सरागन कितना वितरागन, तो उसका थर्मोमीटर बता के कर्म से कि अनंत अनुमान गई इतनी नीतरागता अप्रत्यय गर्म गए थे इतनी नीतरागता बनी शेष रागता कैसे समझिए।
सवाल आपके लिए एक सेशन पे तीन सवाल है, सवाल अलग दो होकर प्रथम अनंत की विद्या फिर विद्या का आनंद, तो इससे पंक्ति का विस्तार से समझाइए।
सर वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो लोग सुन सकेंगे। रजनी भाई आप भी सुनी
लगाएंगे दोबारा।
तो आनंद की विद्या और विद्या नो आनंद बहुत अच्छा काम मैंने जो समझक तो समय ज्ञान की प्राप्ति है वो आनंद की विद्या पहले हासिल की जाती है। डॉक्टर इंजीनियर सर एक बात नहीं करते पहले क्या क्या अभी मैंने पार्ट पूरे बॉडी के समझ के क्या फंक्शन है वो विद्यार्थी करते सब जाकर के वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो जनरल में यही कह रहा है पहले आप विवरण चेक करो हुआ है सेल्फ एंड नाम सेल्फ का स्वर पर फिर वो पर और स्वर का संबंध किस कारण से उन कारण तरफों का भी ध्यान करो तो प्रजनन सात तत्वों का यथार्थ सिद्धांत खड़ा होता है जो बात चलती है ना लेकिन बीच में साइंस में नया बता रहे थे मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है शुद्ध शुद्ध छह तत्वों और क्या था सात तत्वों का ऐसा बताया था ना दस्या तो द्रव तो शुद्ध शुद्ध नहीं है शुद्ध ही है द्रव से लिखो लेकिन तत्वों में जरूर शुद्ध शुद्ध का पर्याय की दृष्टि से भेद होता है सामान्य कथन में वो बराबर है। तो ये जो आनंद की विद्या तो हमको धर्म करना है अच्छी बात है धर्म करना है तो पहले नक्की करो धर्म करना है माने क्या क्या तुम जो पदार्थ हो उसमें धर्म अर्थ है कि नहीं वो कहीं से लाना है क्या कहां से धर्म होगा। तो गुरुदेव ने एक जगह ऐसा बोला कि वो श्वेतांबर कहते हैं कितना पालिका कितनी वंदना करो तो नवानवे है और दिगंबर कहते हैं शिखर जी की वंदना
एक बार
करो टाइम करो तुम्हारे मोक्ष की गारंटी होगी ना। ये कोई आनंद की विद्या का उपाय नहीं है ये जीव की भूल अनादि से जो चीजें होगी न्याय के द्वारा मैं सिद्ध कर रहा हूँ या तो जीव ध्येय को माने विषय को भूल रहा उसका आश्रय नहीं लेता पर का आश्रय लेगा पांच इंद्री के विषय में तो पापा ग्रह बंद के कारण है और परमेश आदि का रमता जी का देवनाथपुर का रहेगा वृद्धि संयम का लेगा तो पुण्यास्त्र बंद चालू रहेगा ये सोचता इनसे मुक्त हो जाएगा। तो इसके ज्ञान में स्वरूप की विपरीतता के साथ कारण की विपरीतता और निराधीन विपरीतता बड़ी रहती है ज्ञान में क्या रहता है जानकारी कितनी आती है इसलिए पहले इसको ये बात की पता लगाना पड़ेगा किसके आश्रय से धर्म होता है। तो सबसे पहले आश्रय दाता कौन इसकी थोड़ी चर्चा में दृष्टि के विषय में लिखी थी अभी अपने केंद्रीय गाथा भी चल रही है कि देखो चार भाव तो पर्याय रूप है एक परम पर्याय भाव जो गर्भ रूप है प्रकार एक रूप है तो उससे तो आचार्य इनको निष्क्रिय कह रहे थे और निष्क्रिय कहा है और उसकी व्याख्या की चेतना चाहिए ने ना तो बंदगी क्रिया का कारण है एक तो मार्ग कर ना तो वो बंदगी क्रिया का कारण है और ना मोक्ष की क्रिया का कारण कौन परिणाम है बंदगी क्रिया माने आप संपूर्ण पाप परिणाम और मोक्ष की क्रिया समझ लेना ठीक है ना ये तो उसका वो कारण ही नहीं है फिर उसको इतना बेदित क्यों इसलिए कि जो बंद का कारण नहीं हो तो मेरा बंधता रहेगा बाकी पर आश्रय करोगे तो उसमें संयम से बंदी होना है कि दूसरी चीज तुम शाश्वत बोलते हो तुम शाश्वत हो तो तुम्हारे ज्ञान में ये बात आ रहे कि भय क्या जो अमर नहीं ज्ञाति बिना क्या फिर बाल जीवन में ये सब कुछ गलती फिर ये पहले ये आनंद की विद्या पहले तो नक्की करो विश्व जीवन आइडेंटिटी जरूरी यही हुआ है आप ट्रेन में प्लेन में चलते हैं आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए ये कहता हूँ अभी हिंदुस्तान में आधार कार्ड बन गए सबके समय दर्शन कुछ नहीं आधार कार्ड बन गया हस्ताक्षर हो गए प्रिंट पर भी थी और तुम्हारे स्वयं के तुम्हारे सारे प्रिंट उसमें आ गए होता ही नहीं होता नहीं तो जरा आधार भटक रहे स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है ये बात का निर्णय इतना पक्का होना चाहिए और आश्रय लेने वाला कौन कि मेरे ज्ञान पर्याय तो आचार्यों ने न्याय में और साधन साधन अपने इसको करण को कहा हाँ जी हाँ सुन रहे तो देखिए हाँ सुनिए आप मैं बोल रहा हूँ विषय चल रहा है आवाज अभी सुनाई देगी चलो मैं बोलता हूँ सुनिए तो आनंद आप जल्दी कनेक्ट कर लीजिए Thank you.
उनका विषय तो रूपी फुटकर है और उसमें जोड़ोगे
तो वो छठे गुण स्थान तक तुम्हारा विकल्प को जोड़ने का होगा, पर को जानने में ले जाएगा। इतने वर्गो का मती शुद्ध ज्ञान ही कारण है, तो स्वभाव बना सकते हैं। भाव शुद्ध ज्ञान ही जीव को मोक्ष का कारण है। पूरे न्याय इससे भरे हुए हैं। अब दो चीजें हम सबको मोक्ष और आत्मा को लेना है, तो हमारे विषय ही और साधन ही है, तो फल नियम से सही आएगा। या तो ये विषय में भूल कर रहा है या ये साधन में भूल कर रहा, जैसे श्रीमती ने कहा यम नियम संयम आपकी हो। अभी साधन व्यवहार से उपचार से होते हैं, आते ही बीच में वो जीव अपने राग से बचता है तो अपने आप वो विषय छूटते चले जाते हैं। पता नहीं यम नियम संयम होते हैं तो और दर्द करता है, परिचय है आदमी होती है सब लेके व्यवहार। लेकिन इनको इसियों ने अनंत वार किया, देखो उपयोग में उपयोग नहीं आया, उपयोग में उपयोग नहीं, उपयोग विरोधानी। तो पूरे समय साधन समन नजरा सत्पाली को भरण ध्यान दुर्बल नंबर अधिकार आदि के सर्वस्व ज्ञान अधिकार है। एक गजब का चेंज दिखाई देता है। वो क्या, वो आचार्य कह रहे हैं जनन क्रिया आधार है और सरकारी दबा देंगे, और आत्म कहता द्रव्य प्रयास गुणा गुणा द्रव होता है आधार और गुण प्रयास होती है आधी। वो कहते नहीं, जब तुम्हारे ज्ञान में उस आधार को द्रव को जाना, तो पहले जाना आदम से युक्ति से युक्त पांचवी कारण में हमें शासन कहा है कि वो क्या पद्म ग्रंथ जिन आदम से तुमने जाना जनर शास्त्र को युक्ति से निष्पुत निर्वाद युक्ति यानी बिल्कुल सब पूर्व पर अध्ययन प्रवेश से रहे दोनों से रहे, तुमने लॉजिक से उसको कर लिया और फिर ज्ञानियों को देखकर बन गया। ये तीन बातें तो तुम्हारे साधन में अधिक बार आ गई। आदम पढ़ा कहा क्या लिखा, गुरु ने क्या कहा, इसकी लॉजिक भी पढ़ दिया गया है। लेकिन चौथा जो है जिसमें ये सब परोक्ष में डाल दिए, अब इनकी परीक्षा करके स्वान और प्रत्यक्ष प्रमाण करना, तो वो है ज्ञान साधन। तो इसलिए भीष्म जो बोले अभिग्रह तो वो यही कहता है कि शुद्ध पर्याय ही आत्मा है, उतना ही आत्मा है जो श्रेष्ठ आया। यानी आपने भेद को नष्ट किया, गुण भी रहे पर्याय भी रहे शुद्ध पर्याय भी रहे, ऐसा ये निर्णय करने वाला अपना ही दुर्ज्ञान। एक समय ये पर्याय के भेदी में प्रकाश शास्त्रों से चिद्रू 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 ऐसा यानी मैं सबको अपने ज्ञान पर्याय में स्वीकृत हुआ तो समस्त परम प्रभाव से दृष्टि गई, गुणभेद से दृष्टि गई और एक अभेद खंड आत्मा पर दृष्टि आई। तो तीन सौ इस दाखा में जो किया ना विषय का कौन बोलेगा, मैं यह अखंड ही प्रत्यक्ष प्रतिवाद भाई सकल निरावरण अखंड ही प्रत्यक्ष प्रतिवाद भाई अभिनंबर शुद्ध पारिणामी परम भाव ज्ञान परम भाव लक्षण परमात्मा हूँ चूंगी, ये मैं हूँ ये ज्ञान में स्वीकार किया, ये विषय। अब वो ज्ञान उसमें लीन हो जाए, ये साधन बन गया। पूरा निर्णय सारा ज्ञान साधन है निर्णय में, लीनता में, अनुभव में, और ये अपने आप रागादि को हटने बैठने की बाह्य अनुकूल साधन यम संयम बन निकले जाए। तो इस प्रकार से वो आनंद की विद्या पहले हासिल की, ज्ञान गुरुदेव ने जगत खोला है सम्यक ज्ञान वत सामान्य ज्ञान इतना निसंकित होता है तब ही उसका उपयोग स्वरूप सर्व भौतिक कर्म लब्धि में जाता है।
अभी अगले जो क्वेश्चन है उसमें आपके आंसर दो या तीन मिनट में लिमिट करें तो उसके वालों का नहीं तो उनका भी प्रश्न
रह जाएंगे। तो है आनंद की विद्या अनंत विद्या की बात पूछिए।
अगला सवाल है वैदिक लिए अनुयोग द्वार किसे कहते हैं, क्या अनुयोग और अनुयोग द्वार में संबंध है, पर्यायवाची है?
हाँ पर्यायवाची है, कोई इसमें फर्क नहीं है। द्वार शब्द तो इसलिए लगाते हैं कि जैसे दरवाजे से एंट्री अंदर होती है, ऐसे चारों अनुयोगों की स्टाइल से यानी उसकी पद्धति को समझने से जिनवाणी के अंदर प्रवेश होता है। जिन निश्चय से कहें तो अपने भगवान आत्मा में प्रवेश होता है। तो तत्व ज्ञान में प्रवेश करने के लिए चारों अनुयोग द्वार का काम करते हैं। यानी इसके विरुद्ध यदि हम कोई दूसरा मार्ग अपनाना चाहें, जैसे कि आजकल फैशन है कि सब जगह आत्मा की बात होती,
ये बड़ी पंचम काल का आश्चर्य है कि ऊंची से ऊंची अध्यात्म की बात और ऊंचा से ऊंचा ग्रहित मिथ्या दोनों साथ चलते, ये पंचम काल में असंभव छे है। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे, हैं? बहुत से ऐसे दुकानें हैं जहाँ तत्व की बात, अध्यात्म की बात, तो आत्मा की बात, अनुभूति की बात, आत्मज्ञान की बिना कुछ नहीं होगा, ये सब बात चलती है। और ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब ये सब अनेकांत के हिसाब से, तो ये सब अपने लिए अलग से अपनी अपनी अपेक्षा से सभी सही हैं, तो ये मार्केट में भी बहुत चलता है। इसलिए अनियोग द्वार जिनागम में जो चार अनियोग की शैली से वर्णन है, उस माध्यम से हम तत्व ज्ञान को समझेंगे तो सम्यक ज्ञान का व्यवहार होगा। अभी कल के लेक्चर में ये आने वाला है, ये टॉपिक सम्यक दर्शन का व्यवहार, सम्यक क्योंकि व्यवहार निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, अकेले व्यवहार का उपदेश दो प्रकार का बताए, तो सम्यक ज्ञान का व्यवहार, चारित्र का व्यवहार, तो अनियोगों की पद्धति से अपने को तत्व ज्ञान करना चाहिए।
वर्तमान युग में राजा के वैभव का अभाव का वर्णन आता है, इससे कौन सा तत्व निकलता है?
वो राजा ने उस वैभव को त्याग के दीक्षा दे दी, ये तत्व निकलता है। कोई भी राजा की कहानी बिना जब तक वो मुनि बने नहीं और मुनि बन के मोक्ष प्राप्त नहीं करे तब तक वो कहानी पूरी नहीं होती। तो वैभव दिखाने के दो समझो एंगल है। बोले बोले चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है, तेरे घर में 96,000 कपड़े भी नहीं होंगे और उसकी रानियां तो 101 रंगा और उर्वशी और इंद्र की पटरानियों से भी कंपटीशन में, मतलब वो ब्यूटी क्वीन की कंपटीशन हो गए तो वो जीत जाएगी। और तू एक साधारण सी स्त्री के मोह में पड़ा हुआ है, तेरे उनके सामने तेरा वैभव है क्या? कुछ नहीं। उन्हें उस वैभव में सुख नहीं दिखा, तुझे इस वैभव में सुख दिखता है, तो ये कितना बड़ा अज्ञान है, ऐसा बता करके वो वीतरागता की ओर ले जाते।
अंग प्रवेश के बारे में
लंबा
यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आपने भी चित्र दिया है आपकी बुकलेट में, तो आपके ऊपर मैंने सबके कहा था कीर्तन कर की ध्वनि गण भर में सुनी, अंग रहते किन्हीं ज्ञान में तो क्या है दिन भर मानी चित्र बनाने रोमन मानी पूज है। तो जितना ज्ञानी केवल ज्ञानी जागरूक का जो अनंत भाग गंगा झेलते हैं समझते हैं उसका भी और भी कम भाग भी लिख पाते गुण पाते हैं अंतर्मुख में इतना ज्ञान की पराकाष्ठा। तो सूत्र स्कंद में मतलब स्कंद बतलाता है देवस्त्र, तो इसमें दो भेद हैं, एक अंगवाही और एक अंग प्रविष्ट। अंगवाही की देवदेश प्रकीर्ण भेद है, ये जो नीचे जो बने ना ऐसे सात सात भेद अंग प्रकीर्ण कह जाते हैं, और इसमें पूरे सामायिक मंडलिक मांडलिक मंडलिक इस तरह के कुछ भेद है प्रतिक्रमण आदि सब। ये मतलब आत्मा के लिए साधक अवस्था में क्या क्या होता है, वह स्थिति कैसा सब उनके मैंने विशेष बताई थी। और अंग प्रवृत्ति में ही मैंने कहा था अंगकार आत्मा लेना निकालना चाहिए, अंग देखिए आत्मा करके लिखा मेरे अंगों को मत सुनो अनुमान। तो जो द्वादश अंग है वो 12वें अंग के 5 दिन पूरे नाम में बचपन में रहते जाते हैं। 12वें अंग के 5 भेद है प्रथमानियो चूड़िका परिकर्म सूत्र और पूर्व, यही है ना कुछ और है। अब ये जो पूर्व है चौधरी ये लास्ट में तो इतना सारा ज्ञान हो जाने पर भी शुद्ध केवड़ी कहलाते हैं, तो उसमें ये भी कथन मिलता है जिनको 11 से 10 फुट का ज्ञान हो जाता है यदि शुद्ध केवड़ी नाम पा जाते हैं। किंतु यदि वो 10वें फूल में जो उसका प्रयोग कर रहा है तो सारी विद्या गायब हो जाती है, उनको विद्या वृत्ति हो जाती है।
सितंबर में जाता है कि स्कूल वर्ग को 11 से 10 फुट का इतना ज्ञान था, उसके भी थे योगी समझे बराबर मानते थे, और उन्होंने लघु ज्ञान बाद आदि को जो है 10वें फूल का प्रयोग कर डाला। बोले उनकी बहन उनसे मिलने आ रही थी, है ना, एक बात उन्हें तुरंत एकदम विकराल संघ का रूप धर कर वो डर के भागे। और ये देखें
कहता है प्रयोग नहीं करती, किस काम की है
तो ये जो अंग प्रवृत्त है उसमें भी मूल में जो ज्ञान प्रभाव पूर्व है जिसकी वो सब भेद थोड़ा इसमें लेकर समझदार की प्रस्तावना है, उसमें कितने प्रावण है, उस प्रावण में कैसे कुंभकुंभ भगवान ने आचार्य में सारे चीज सारा अनुकुंभ में लिख रखी, और ये ग्रंथ होने से द्रव्यन का आज अपने को दृष्टि मिल गई। दृष्टि का बल जानना सिद्ध भगवान संसार में वापस क्यों नहीं आते, समय दर्शन का दृष्टि का बल जानना।
ये सूत्र पावट में आपको इसका बहुत डिटेल में सूत्र पावट की टीका में मिलेगा, दशमन श्रावाचार की टीका में मिलेगा, ये सब मेमोरियल चीजें हैं, आप लोग हमारी मेमोरी की परीक्षा ना दे तो ज्यादा अच्छा।
अनुयोग द्वार सूत्र ज्ञान क्या है?
अनुयोग द्वार
सूत्र ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
श्रुत ज्ञान,
अनुयोग द्वार श्रुत ज्ञान, वो पांच भेद जो आप बता रहे
हैं ना पूरे सारा शुद्ध ज्ञान जितना भी है तो कौन से अनुयोग का है? मैंने कहा था ना कि पहले तो एक बार था अनुभवी अनुयोग रहते, बाद में जब थोड़ी रह गया तो कोई बचा बना था तो समस्त मंत्राचार्य ने उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया, वो अनुयोग द्वारा बन गया, प्रथम अनुयोग प्रथम कारण चरणम द्वितीयम नमानी वाते जाने। अब इनका शुद्ध ज्ञान माने एक तो द्रव्य रूप और उसका भाव, ज्ञान तो अपना है और ये आचरण लिखे इन पर हम बैठ जाता है समय सारे शास्त्र को ज्ञान है शास्त्र ज्ञान है ना, तो भी उसको शब्द ग्रह कहा और उसको उतना ही उपास्य बदला दिया जिनवाणी का, क्योंकि आज शब्द ग्रह में तो हम भाव ब्रह्म अपने चैतन्य आत्मा को समझ पा रहे, तो वो जो अनियोग द्वारा पूछा ना तो इधर वो भाव से घटा ना उसमें कुछ ऐसा
नहीं। और आपके लिए अनुभूति के लिए करना योग हथियार है, समझाइए
अनुभूति के लिए चरण योग उपचार है।
देखिए चरणान योग हार्डवेयर वाला फैक्टर है, चाहे सम्यक दर्शन की बात हो, ज्ञान की बात हो या चारित्र की बात हो, इन तीनों का जो हार्डवेयर पोर्शन है वो चरणान योग उसको कवर करता है। तो उसमें ऐसी कोई क्रिया नहीं है बाह्य क्रिया जिस पर अनुभूति का आरोप किया जाता हो, समझना जरा, व्रतों का आरोप होता है क्रिया के ऊपर, फिर अंदर में दुख कषाय का अभाव हो गया तो देश चारित्र प्रकट हो गया तो बाहर में अनुव्रत हो गए, इन पर होता है। इन सम्यक दर्शन तो केवल अभिप्राय की चीज है और वो अभिप्राय नहीं होती, कोई बाह्य क्रिया ऐसी नहीं है जो सम्यक दर्शन की गारंटी दे रहे, क्योंकि देवलिंगी को भी इतना ऊंचा वैराग्य और ज्ञान हो जाता है शास्त्र ज्ञान तो भी सम्यक दर्शन नहीं है, तो अनुभूति का उपचार किसी से नहीं होता भाई साहब। आप फिर से विचार करके दोबारा फॉलो अप क्वेश्चन करना और कोई दूसरी बात हो गए कोई दूसरा विचार हो तो मुझे बताना। कोई जीव को अभिप्राय में चैतन्य की अनुभूति है सम्यक दर्शन है तो वो नहीं है वाली क्रियाएं तो हो सकती हैं बहुत सी, जो नहीं है वो बता, गुरु को देव का सेवन करे, सत्य वचन का सेवन करे, समझ में आया, सामान्य सदाचार की नहीं हो तो अनुभूति नहीं है इसकी तो गारंटी हो सकती है, पर है इसकी कोई बाह्य क्रिया गारंटी नहीं देती, समझ में आया ना। और तो ध्यान मुद्रा में बैठा है तो वो नकली भी ध्यान मुद्रा में बैठ सकता है, मुद्रा से क्या होता है। तो इस तरह अनुभूति का कोई उपचार चरणान योग नहीं है, उसमें अनुव्रत महाव्रत जो होते हैं उनका उपचार होता है मेरे ख्याल से। न
आपके लिए वर्षों से होने के बाद अनुभूति क्यों नहीं
करता नहीं है। देखो मैत्री के वचनामृत में एक बहुत बढ़िया बोल आता है, अटकवाना स्थान गणा छे, क्या तो जीव बाह्य क्रिया में अटकी जाए छे, क्या शास्त्र ज्ञान में अटकी जाए। कहीं ना कहीं उनको महिमा पर की आती ही रहती है, पर की या पराश्रित भावों की, पराश्रित ज्ञान की, उसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझ लेता है। शास्त्र ज्ञान हो गया और थोड़े मन कर जाएंगे विकल्प हो गए तो अंदर में ऐसा लगता है कि भाई मेरा काम तो हो गया। तो इस तरह वो जो उसमें अटक जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो वो मूल चीज तक नहीं पहुंच पाता है। फिर एक और जो हम लोगों की अभी स्वाध्याय में ज्यादा ये चर्चा आती है, पर्याय को पलटने की जो बुद्धि रहती है कि मुझे ये पर्याय नहीं चाहिए और ये पर्याय प्रकट करनी, मुझे अनुभूति प्रकट करनी है, तो अनुभूति की पर्याय की कर्ता बुद्धि, ये सूक्ष्म विचार तो है। तुम हो कौन पहले ये नक्की करो, यही भूल हो गई। जैसे कोई कहता है कि मुझे तो इस भाव में सम्यक दर्शन करके ही रहना है, मेरी प्रतिज्ञा है, तो अगर ये बात भावना के लेवल पर उठती है तो विशुद्धि की बात है। उसने करोड़पति बनने का संकल्प नहीं किया, सारी दुनिया घूमने का, परिग्रह जोड़ने का, बड़ा सेठ बनने का, पंडित बनने का, नेता बनने का संकल्प नहीं किया, मोक्ष मार्ग की बात है, वह विशुद्ध परिणाम। लेकिन यही बात अगर अभिप्राय में इसका रूट इसकी जड़ अभिप्राय न हो है, तो मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, यानी तूने अपने को क्या माना। मिथ्या दृष्टि माने बिना कोई कैसे कह सकता है कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, तो अपने को क्या एक मानो तो हो गया सम्यक दर्शन। तो बात इधर वो दृष्टि प्रदान जो चिंतन है वो नहीं बन पाता। अच्छे अच्छे शास्त्र अभ्यास होने पर भी मैं तो इसलिए जो भी मेरे से जरा ज्यादा परिचय में आते हैं और पूछते हैं कौन से ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो मैं स्वानुभूति दर्शन और सौगानी जी का जो धर्म दृष्टि प्रकाश, दो चीजें सजेस्ट करता हूँ। ये राम बाण औषधि है, मतलब वो क्या चिंतन क्या थिंकिंग होनी चाहिए उसके लिए ये चीज है।
आपने कहा कि जीव अनादि की मान्यता, कि जीव को अनादि की मान्यता बदलनी है, मान्यता का स्वरूप क्या है, ज्ञान है दृष्टि है कि विकल्प रूप है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, टोटोलॉजी शिक्षक तक जाना है कि जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, तो मैं इससे कहा करता हूँ जीव मिथ्या दृष्टि है, जीव की दृष्टि मिथ्या है। तो इस पर जीव की दृष्टि मिथ्या, जीव तो जीव वो जो मिथ्या है ना, जीव तो जीव है, जीव से। तो जब तक जीव को अपने स्वयं स्वरूप के बारे में भूल है, माने अन्यथा मानता है, तब तक दृष्टि उसकी मिथ्या है, तो जीव मिथ्या दृष्टि है। तो उस दृष्टि को अभेद उपचार करके जीव को ही मिथ्या दृष्टि कह देती है। ये जीव समय प्रति है, उसकी दृष्टि समय हो गई स्वयं के बारे में, तो जीव समय प्रति कहता है। तो ये तो जो वस्तुएं हैं उनके बारे में दिखने का देखने का, और ज्ञान निर्णय करता है और श्रद्धा उसमें पहुंच करता है, ये सब जानते हैं। तो मिथ्या दृष्टि को मैं मनुष्य ही हूँ ऐसा उसको अंदर में बजे चाहे अहम पर जो पर्यावरण मिथ्या दृष्टि है। और जितने बिना कई भिन्न आत्मा भिन्न समय प्रयोजन का संयोगी ये जो आसमान जाती ध्रुव पर्याय है, इसमें से तेरी दृष्टि निकल जाए और अपने ध्रुव पर्याय रूप आत्मा में दृष्टि आ जाए, तो तुमने बहुत दृष्टि सही कर ली, पर मैं तुम हट चले तो इस तरह का है। तो दृष्टि माने ज्ञानात्मक की है, विकल्पात्मक की है और अभिप्रायात्मक की है। लेकिन वो श्रद्धा सही है कि गलत है पकड़ेगा, वचन में आएगा वो ज्ञान नहीं आएगा, सारा वर्णन ज्ञान ही करेगा, श्रद्धा का भी शास्त्र का भी सब कुछ सब ज्ञान को अर्थ ही होता है।
और क्या विशेष प्रश्न पूछना है, किसका प्रश्न?
हाँ जी, मान्यता की भूमि में जाने के लिए, क्योंकि वहीं
मान्यता की भूमि में ये पंचायत की बात कर रहे हैं, तो आई एंड माइंड दो चीजें मैं और मेरा, जब तक मैं के बाहर मेरा दिखता है, मेरे के बाहर मैं दिखता हूँ, समझ लो मान्यता की भूल है, आई के बाहर माइंड ही, माइंड के बाहर आई है, तो मैं वो बात कर रहा था समय कम पहले आईडेंटिटी कार्ड, समय प्रश्न सिंह बट आईडेंटिटी कार्ड कौन जिसको जो आईडेंटिटी भूली नहीं हुआ, तो एक बार मैं चेतन को है उपयोग करूँ बिनमूर्त चिन्ह मुहूर्त अनु पुद्गल न धर्म धर्म काल इनके न्याय मेरी चिंता ठहराना सुदर्श में स्थान कह जाता उसको भी कोई पढ़ ले बोले ना समय प्रश्न की परिवार सीखना पर प्रश्न में भिन्न आप में रुचि समय तो बोला है कितने घर कहाँ कौन डंडा लिए खड़ा होता हूँ मैं अपने बोला मैं पूछता हूँ वो सब एक खंड कहने में आता भावना के लिए सही बात करती है तो ख्याल में तो उतना घटता चिंतन से आना चाहिए विधि करके अवश्य यह है मूल चीज में नहीं ऐसी बात खुद कई जगह आते हो प्रोफेसर साहब ने आपने कई तो कर दिया था क्या तुम्हें ये मैडम हो गए खुद अधिक पूछ रहे राम देव हमारा मातृ वाणी ना कारण से थी सत्ता ना कार्य ना हनुमंत ही सकती हूँ न मैं देह हूँ न मन न वाणी न कारण मन वचन काय तीनों नहीं हूँ न इनका करता न कराने वाला न हनुमंत का अगर ये निर्णय तुझे हुआ है तो बात कार्य ग्रह की बात फिर बात ज्ञान कार्य से तो ज्ञान जी को अपने ज्ञान को निरस कर दे और उसके बाद फिर कहते हैं 191 से 200 का पढ़ना मैं कर पाऊँ प्रथम कार्य उन्होंने उसमें वही क्रीम निकाल के रख दिया नाउ इज यूर कैप्टन डेट माने मैं पढ़ता नहीं हूँ पढ़ मेरी नहीं है तो उस काल में आपका उपयोग अपने स्वभाव में आता है यही उपाय है जो उसको बताएंगे और उसको बोला नहीं है क्या आपको भी ज्ञान करना चाहिए अनुभव करना चाहिए और शायद कहाँ से रहना चाहिए सभी कल से विकल्प होना मतलब तुम कह रहे थे विकल्पला पर से भिन्नता कि मेरी सत्ता फिर बिल्कुल इंटैक्ट प्योर है अनादि है ऐसा तो मानस सही हो जाए
सात तत्व नव पदार्थ क्या है
कोई विशेष अंतर नहीं है प्रचलित पद्धति ये है कि सात तत्वों में पुण्य और पाप का भेद और करके उसको जोड़ दिया जाए तो नौ पदार्थ कहते हैं लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि समय सार जी में ही अमृतचंद आचार्य देव ने नौ तत्वों का शब्द का उल्लेख किया नौ तत्व गति तत्व न मुंचति अथवा तन मुक्तवा नव तत्व संतति मीमामा आत्मा मे कोस्तु न तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है पदार्थ कहो तत्व कहो लगभग पर्यायवाची भी है और थोड़ा फर्क भी है जब पदार्थ कहते हैं तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब आ जाते हैं तो वो द्रव्य व्यवस्था में आ जाती बात और तत्व कहते हैं तो उस पदार्थ का जो स्वरूप है उसका जो भाव पक्ष है द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो भाव वाला पॉइंट है उसको फोकस करते हैं तो वो तत्व कहला तत्व मनपणा तत् मानव तो उस पदार्थ का जो पदार्थपणा है जीव का जीवपना जीवत्व वो उसका भाव जीव पदार्थ है ज्ञान उसका भाव या तत्व है अनेक तरह से व्याख्या है
ड्रिंक पार्ट वाली चीजें जो आजकल मिक्सिंग में आजकल मिक्सिंग होता है तो इन चीजों में कैसे बचे
रामदेव वाला वो स्टडी कीजिए उसमें बहुत आता है और मेरा विषय भी नहीं है
आपका प्रतिभूत जीव है जीव को मोक्ष यात्रा का आनंद चालू करनी
चाहिए पहले प्रतिबुद्ध बने समय साल में आया अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं यानी जो मिथ्या दृष्टि है देह को मैं मानता हूँ देह को आत्मा मानता है देह की क्रिया का कर्ता मैं हूँ ऐसा मानता है तो यथार्थ तत्व निर्णय के द्वारा ही उसका यू टर्न हो सकता है और तत्व निर्णय करे तो फिर उसको रस आएगा स्वभाव का, यात्रा चालू हो जाएगी। प्रारंभ पहला टोटल मछली निकाल, तेरे हाथ में तो बुद्धि पूर्वक तत्व विचार करके तत्व निर्णय करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक होता है। देखो भोजन बनाना, भोजन मानो भोजनालय में बन गया, हमारे हाथ में ये है कि थाली में आया है तो हम उसको मुख तक ले जाए, अच्छे से चबाए और नीचे उतार, बाकी उसका जो विटामिन का जो काम होना है, जो रस बनना है, जो बनना है, वो ऑटोमेटिक बने। तत्व विचार वो तत्व निर्णय को पहचानने की प्रक्रिया है, तत्व ज्ञान को वो होनी चाहिए। लास्ट है क्या है,
वैसे तो हरी खाने में पापी है लेकिन कम पाप जिसमें हो वैसे तो ही हरी का नाम
पसंद। राम नंबर डायल हो गया, ये लिखा है प्रभु जी ने, मान लो सब हरि का लेवल, एक तो प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति ये भेद है, तो जिसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं उनका त्याग होना चाहिए, ख्याल में अनंत काय होते हैं, और उसमें मतलब कषाय की तीव्रता है इसलिए पाप ज्यादा रहता है। ये जो पाप का लेवल है वो मतलब आप, अगर आपको पता है कि इस चीज में हिंसा ज्यादा होती है फिर भी आपका राग नहीं छूटता है, तो मतलब राग तीव्र है, तो फिर जो साधारण होती है जिसमें एक शरीर के आश्रित एक ही जीव होता है तो वो अपनी मजबूरी है, तो समझ लीजिए लेना कोई उपाधि है ऐसा तो नहीं कह सकते, एक भूमिका अनुसार उसको लेने की अनुमति आगम है। और भी बहुत सारी बातें हैं, ज्ञानानंद शराफाचार्य एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है वो राजमन जी का, तो उसमें ये देवी बहुत अच्छा है।
इसके बारे में एक सवाल जोड़ता हूँ कि कॉलीफ्लावर बहुत सारे बेल बंधु खाते हैं,
क्या होता है कॉलीफ्लावर हिंदी
फूल गोभी रस मिलता है वो जमीन कम से भी ज्यादा होते हैं और बहुत सारे अनभिज्ञ होने के कारण खाते रहते हैं। जिसने पूछा कि बहुत सारे कई ये सब के बारे में भी हमारे एक मित्र ने भोपाल से वो अपने निकाला है कि विटामिन किसमें ई नाम से जुड़े हुए, और ई नाम से जिसमें जुड़े हुए उन्होंने कम से कम बहुत लगभग हजार के करीब बताए हैं और इनडायरेक्टली वो सप्लेंट कर रहे हैं, तो आप उन चीजों का डिटेल कर सकते हैं और उनसे आपको मिल सकता है।
देवलाली से एक पुस्तक निकली है सामान्य जैना चार, अभी वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी किसी भाई ने एक फैमिली में एक पर्व के अवसर पर दिवाली में, अब इस प्रोग्राम में भी उसको एक फैमिली में एक पहुँचा सकते हैं, और वो ऊपर सरस्वती भवन में है, जिसकी भावना हो वो व्यवस्था उसकी हो जाएगी, तो एक एक फैमिली में वो जरूर ले जाने लाए, जरूर पढ़ने लाए, बहुत से एंगल है उसमें, मतलब मेरा विषय जो है चरणामी वो पूरा उसमें रखा हुआ है।
बाकी पहले ऑडियंस ने इतने उत्साह से क्वेश्चन पूछे हैं और इतने ही उत्साह से हमारे विद्यार्थियों ने आंसर दिए हैं, तो धन्यवाद आप सबका। और कल का प्रोग्राम सुबह में 6:50 पर अभिषेक चालू।
आज सुबह 6:50 को अभिषेक होगा।